ओम शांति। तो सभी बेफिकर बादशाहों को ओम शांति। मेरा फोन आज कहां से खुला रह गया भाई। समय अपनी अंतिम परछाइयां डाल रहा है और बाबा हम सभी को फाइनल परीक्षाओं में फुल पास होने के लिए तैयार करा रहे हैं। बाबा अपने मिलन के बारे में भी ड्रामा को रख रहे हैं। सब इशारों को समझने वाले बाबा के इशारों को जरूर कैच कर रहे होंगे। अब 2013 भी आ गया है, कर दें सभी क्या सब कुछ 13। अब सब कुछ जब हम कहते हैं तो लोगों का ध्यान पहले धन पर जाता है के धन कैसे 13 करेंगे, बच्चे हमारे धन 13 मुश्किल हो जाएगी, धन 13 सो जाएगी। नहीं, मेरे को तेरे में बदलना। डीपली जरा इस पे चिंतन करेंगे, कौन सा मेरा आत्मा को फिक्रों में चिंताओं में डुबो देता है, पहले इस पे नजर डालेंगे। हरेक का अपना कोई ना कोई मेरापन उसे चिंतित रखता है, उसके मन को निगेटिव करता है, उसके मन की दिशाओं को भटकाता है, उस पे पहले ध्यान देना है। ठीक है, विचार करेंगे अभी, चिंतन करेंगे सभी। हम इस पर थोड़ा सा पीछे आते हैं। तो हम सब कुछ 13 अर्थात संपूर्ण समर्पण भाव अपने जीवन में अपनाएंगे और याद रखेंगे बाबा का महावाक्य, जब तुम संपूर्ण समर्पित हो जाते हो तो संपूर्ण बन जाते हो। जो यहाँ समर्पित भाई बहने बैठे हैं शांति बन के, वो और गहराई से इस पे चिंतन करेंगे। हम समर्पित तो हैं लेकिन संपूर्ण नहीं है, इट मीन्स अभी समर्पणता बाकी है। कौन सी समर्पणता बाकी है, उसकी पहचान, उसको कैच करना, उसकी अवेयरनेस हम सब के लिए बहुत जरूरी है। तो बाबा ने बेफिकर बादशाह बनने के लिए हमें परसों एक नई धारणा की भी याद दिलाई बड़े सुंदर ढंग से। कौन है हम सभी? नहीं, कौन है हम सभी? डबल ताजधारी। अब एक डबल ताज है हमारे पास भविष्य में और एक है अब भी है। एक ताज है लाइट का, दूसरा है माइट का। लाइट का ताज हमें किस किस से प्राप्त हो रहा है, किसी का ये लाइट का ताज बड़ा है, किसी का छोटा है, किसी की लाइट इतनी है कि अपने को भी दिखाई नहीं दे रही है और किसी की लाइट सारे संसार को दिखाई देगी, किसी की लाइट सारे संसार के अंधकार को दूर करेगी। कहाँ से आती है हमारी लाइट, किन किन बातों से, किन किन धारणाओं से बढ़ती है हमारी लाइट? पहला, उससे भी पहला, ज्ञान। सबसे पहली चीज हमारे पास आया है ज्ञान का प्रकाश। बहुत बड़ी चीज है ये, इसी की तो हमें तलाश थी ना अब तक। ज्ञान के बिना ही तो हम भटक रहे थे ना, तलाश कर रहे थे और कहीं कहीं अपूर्ण ज्ञान को ही संपूर्ण ज्ञान समझ रहे थे। देखो, सबने ध्यान दिया हो, चंद्रमा 10 कलाओं से भी जब आगे निकल जाता है, 11, 12, 13, 14, अब 14 कलाओं तक पे चंद्रमा को देखो तो उसका प्रकाश आत्मा को, मनुष्यों को आकर्षित नहीं करता। और जब फुल मून होता है, हर व्यक्ति देखना चाहता है उसे, देखते ही रहे। मैंने देखा, फिर 15 के बाद फिर 14 हुई। मैंने एक बार अभी पिछले साल इसी साल में देखा ध्यान से कि एक कला कम होते ही वह आकर्षण समाप्त हो गया है। तो बाबा की ये बातें समझ में आई जो बाबा कहते हैं, पहला जन्म फुल कलाओं से युक्त वो बहुत महान है। तो हम भी अपूर्ण ज्ञान को ही ज्ञान का प्रकाश समझ रहे थे, लेकिन वो था नहीं। जहाँ सत्य है सभी समझाने के लिए भी जान ले, जहाँ संपूर्ण सत्य है वहीं तीन बातें याद करें, सत्यम शिवम सुंदरम। जहाँ संपूर्ण सत्य है वहीं हम अपना और दूसरों का कल्याण कर देते हैं, और वहीं हमारा जीवन संपूर्ण सुंदर बन जाता है गुणों से युक्त। तो निश्चिंत होने में सबसे पहली लाइट काम करती है ज्ञान की, ये ज्ञान का प्रकाश हमारे साथ है। दूसरी लाइट कहाँ से मिलती है हमें? प्योरिटी से। जिसके पास जितनी प्योरिटी है उसका प्रकाश उतना ही तेज है, तेजस्वी है वो आत्मा। अब प्योरिटी एक ब्रह्मचर्य से हमारी प्रारंभ होती है, और फिर है कि हमने अपनी सभी वासनाओं को शांत कर दिया हो, सभी इच्छाओं को समाप्त कर दिया, केवल दमन नहीं, ये सब शास्त्रों में भी इच्छाओं का दमन नहीं, ईश्वरीय सुखों से हमारी इच्छाएं स्वतः ही शांत हो गई हो, इसमें क्रोध भी शांत हो गया हो, अहंकार भी समाप्त हो गया हो, दोनों गहरे भी हैं, इनकी जड़ें भी बहुत गहरी हैं, ईर्ष्या द्वेष भी समाप्त हो गई हो, रिवेंजफुल फीलिंग भी समाप्त हो गई हो, बदले की भावना, चित्त निर्मल निर्विकार, ये शब्द प्योरिटी की सब सर्वोच्च स्थिति के लिए है, निर्विकारी स्थिति, चित्त निर्मल। ऐसी स्थिति आने पर प्योरिटी का प्रकाश संसार को आकर्षित करेगा। बाबा के ये महावाक्य हैं अव्यक्त, तुम्हारी संपूर्णता का प्रकाश सभी के अंदर के अज्ञान अंधकार को समाप्त करेगा। जिस दिन हम संपूर्ण बनेंगे, हम में से कुछ आत्माएं भी पूर्णिमा की चंद्रमा की तरह चमकेंगी, तो संसार में सभी आत्माओं में जागृति आ जाएगी। जिसको वो ज्ञान समझ रहे हैं उन्हें पता लग जाएगा यह ज्ञान है। देखिए विज्ञान में लोग बड़ी भावना रखते हैं, लेकिन जो विज्ञान के लोग हैं वो जानते हैं विज्ञान की बहुत सारी रिसर्च गलत होती है, वो तब उन्हें लगती है ये संपूर्ण है, आगे चल के वो अपूर्ण लगती है, असत्य लगती है, झूठी लगती है। मुझे भी कई लोग बताते रहते हैं, मैं उन्हें सीधा ही बोल देता हूँ ये तुम्हारी रिसर्च गलत है, ये असंभव है, ये खोज है, खोज कभी भी परफेक्ट नहीं होती है, खोज खोज होती है। तो हमारे पास प्रकाश है ज्ञान का, प्योरिटी का, दो ये बड़े प्रकाश हैं। और भी कोई प्रकाश है हमारे पास? योग भी हमें प्रकाशित करता है। देखिए इसके लिए बाबा ने कहा कि योग से आत्मा की ज्योति बढ़ती जाएगी, उसकी लाइट बढ़ती जाएगी, और तुम्हारे मस्तक चमकते हुए नजर आएंगे। अभी भी था मुरली में परसों। तो ये साधन है हमारी लाइट को बढ़ाने वाले, और जितने जिसके पास लाइट है उसका उतना ही अपने में विश्वास है, उतना ही वो अपने को पहचानते हैं, बाबा को जानते हैं, उसकी शक्तियों को पहचानते हैं और निश्चिंत रहते हैं। माइट, माइट कहाँ कहाँ से मिलती है हमें? शक्तियों का ताज है हमारे पास, देवताओं से भी ज्यादा किसके पास है? शक्तियां ब्राह्मणों के पास होती हैं, क्योंकि देवताओं को अपनी शक्तियों को यूज करने का कोई ना अवसर है ना उन्हें करना है, हमें अपनी शक्तियों को यूज करना है। कहां कहां से मिल रही हैं शक्तियां? अब यही बात फिर से, ज्ञान भी बहुत बड़ा बल है, प्योरिटी भी बहुत बड़ा बल है, स्वमान का भी बहुत बड़ा बल है, और फाइनल बल हुआ योग का, जिससे बड़ा बल और कोई नहीं होता। मैंने कल भी एक बात क्लास में कही, मधुवन में क्लास थी, मैं आप सबके सामने भी क्या देना चाहता हूँ और आपको दूसरों को समझाने के लिए वो बड़ी उपयोगी बात होगी। लोग कहते हैं भगवान सर्वशक्तिवान है। जब बाबा साकार में थे तो कुछ लोग बाबा को आ करते थे, हम लोगों को कहते थे तुम्हारा दादा भगवान है, मक्खी मार के देते हैं जी जी ला के दिखाए। बाबा मुरलियों में भी कहते हैं ना, तुम्हारा भगवान वो बाप भगवान है, ये समस्याएं तुम्हारे पास क्यों आ रही हैं? इनको भी रोग क्यों है, इसको बीमारी क्यों है, बाबा तुम्हारे साथ है, भगवान है, ये सब क्यों हो रहा है, यज्ञ में विघ्न क्यों पड़ रहे हैं? और यज्ञ निवासियों के मन में भी ये विचार कहीं ना कहीं छोटे बड़े उठते रहते हैं। ध्यान से सुन लेंगे, सर्वशक्तिवान की शक्तियां उन छोटे कार्यों के लिए नहीं है जिन्हें मनुष्यों की शक्तियां और प्रकृति की शक्ति करती है। बीमारों को तो डॉक्टर भी ठीक करते हैं, उसमें सर्वशक्तिवान की शक्ति को यूज करने की उसको जरूरत नहीं। प्रकृति के भी बहुत सारे नियम हैं, प्रकृति भी बहुत सारा बैलेंस करती है, उसमें भी बहुत शक्ति है, वहां भी सर्वशक्तिवान को अपनी शक्तियां लगाने की जरूरत नहीं। जो मर गया उसको जिंदा करना ये सर्वशक्तिवान का काम नहीं है, वो तो सृष्टि का नियम है, मृत्यु जन्म मृत्यु जन्म, उसको वो क्यों चेंज करेगा? सर्वशक्तिमान की शक्तियां कहाँ यूज हो रही हैं? विश्व परिवर्तन में। दूसरा कहाँ हो रही हैं? सर्वशक्तिमान की शक्तियां आत्माओं के विकर्म विनाश करने में यूज हो रही, जो काम संसार में कोई शक्ति नहीं कर सकती। विज्ञान की शक्ति कर सकती है, उसने एटम बम हाइड्रोजन बम बना दिए, वो संसार को नष्ट कर सकती है, वो प्रकृति का विध्वंस कर सकती है, लेकिन विकर्मों को विनाश नहीं कर सकती। सर्वशक्तिवान की शक्ति ये काम करती है। सर्वशक्तिवान की शक्तियां विकारों पर विजय प्राप्त कराती है। संसार में कोई ऐसा है जो काम क्रोध लोभ मोह अहंकार को जीत पाए? बड़े बड़े सन्यासी बड़े बड़े योगी असफल होते रहे और बाबा ने ही आकर अपनी शक्तियां देकर ये कार्य कराया। तो सर्वशक्तिवान की शक्ति विश्व कल्याण में काम आती है, आत्माओं के उत्थान में काम आती है, उनके प्योरिफिकेशन में काम आती है, न कि छोटे कामों में। वहां शक्तियां काम आएंगी मनुष्यों की, वहां शक्तियां काम आएंगी प्रकृति की। इस पे सभी ध्यान देंगे तो हमारे पास परमात्म शक्तियां भी हैं, हमारे पास बाबा के साथ की शक्ति भी है। तो इस लाइट और माइट से हम अपने को निश्चिंत बनाएंगे। सभी इस मुरली के आधार पे अपने जीवन पर एक दृष्टि डालें। कौन कौन सी चीज मुझे चिंतित करती है और उसको ज्ञान और योग के बल से यानी लाइट और माइट के द्वारा हम ठीक करेंगे। बताएंगे पांच बातें। कौन सी बात हमें चिंतित करती है? बोलो बोलो। बीमारी, पहला इनाम बीमारी को। कुछ और बताओ, और बताओ हैं? तो एक चिंता करने वाली बात, थोड़ी सूक्ष्म बातों पे ध्यान दें। बीमारियों की ज्यादा चिंता तो मनुष्य को नहीं होती, आई हैं जाई हैं, जाएंगी इलाज भी कराते हैं। इनसिक्योर फीलिंग, समझते हैं ये इंग्लिश सब? बच्चों के लिए पता नहीं क्या होगा इनका, अपने लिए बहुत इस बात से चिंतित हैं कहीं हम हार न खा जाएं भविष्य में, कहीं माया मुझे हरा न दे, पता नहीं हम ज्ञान मार्ग में चल पाएंगे या नहीं, क्या होगा हमारा, चाहे धन के कंसर्न चाहे संबंधों को लेकर। इनसिक्योर फीलिंग, क्या यूज करेंगे हम ज्ञान का? जैसे विदेशों में होता है ना, हंसी की बात भी है, शादी करते हैं और दोनों को एक दूसरे पे विश्वास नहीं होता, कब छोड़ दें? विदेशों की यही कल्चर है ना, जो भारत में भी आती जा रही है, इसलिए वहां अशांति बहुत है। क्या हम याद रखेंगे लाइट और माइट की बात? मस्त रहे बिल्कुल, ठीक है, बोलते रहो। स्वयं भगवान हमारा साथी है, और बोलो, अपने मुख से बोलेंगे सभी, पहने बोलें। अरे तो हो गया, आगे बढ़ो ना, हैं? तब इसकी कोई चिंता ना हो हमें, हमें सोचना ही न पड़े हम खाएंगे कहाँ से, बच्चों की पढ़ाई कहाँ से होगी, जो भी चिंताएं आप परिवार वाले बहुत सारे बैठे हैं, हम भगवान की छत्र छाया में हैं। और बाबा हजार भुजाओं सहित मेरे साथ है, बोलो, जो होगा वो बहुत अच्छा होगा। संकल्प कर लें, मैंने अपनी जीवन नैया की पतवार किसके हाथ में सौंपी है? सौंपी है या मेरे कहने से सौंपी है? मुझे लग नहीं रहा, हाथ उठाएंगे जिन्होंने सौंप दिया। हाँ, अब आपने ठीक कहा, सौंप दो, क्योंकि ये जो मैंपन है ना, जो बाबा कह रहे मेरे को तेरे में, ये मैंपन अति सूक्ष्म है, और अनेक ब्राह्मणों को तो पता ही नहीं कि उनके पास मैंपन है, वो कहेंगे नहीं नहीं सब बाबा का है, और परेशान रहते हैं। तो अपनी जीवन की नैया बाबा के हवाले कर दें, और इसको रोज किया करें कुछ दिन तक। अब समय ऐसा आ गया है कि हम अपने जीवन की कुछ बातें ऐसी ले लें जिन्हें रोज सवेरे हमें एक बार अवश्य करना है। जरूर नहीं आप 4 बजे करें, 6 बजे करें, पर एक बार जरूर करना। बाबा, मेरा जीवन तुम्हारे हाथों में, मेरा भविष्य तुम्हारे हाथों में, मेरे ये बच्चे तुम्हारे हाथों में, और ये विश्वास भी हो कि जिसके हाथों में हम दे रहे हैं वो सर्वशक्तिवान है और वो पार करेगा। जिसके हाथ में हमने दे दिया, देखो भारत का इतिहास भी है, शत्रु शरण में आ गया, पृथ्वीराज की शरण में भी आ गया था, पृथ्वीराज पावरफुल सम्राट था, आ गया और निश्चिंत हो गया कि इसके पास रहते हुए मुझे कोई कुछ कर नहीं सकता। ऐसे भारत के इतिहास में बहुत उदाहरण है कि कोई भी कमजोर राजा शक्तिशाली सम्राट के पास आ गया और निश्चिंत हो गया कि मैं इसके पास हूँ, इसकी छत्र छाया में हूँ, इसने स्वीकार कर लिया है मुझे, अब मुझे कोई चिंता की जरूरत नहीं। हम भी इस पे ध्यान दें, किसके छत्र छाया में हम आ गए हैं, उसने हमें वचन दे दिया है, तुम मेरे हो गए कभी भूखे, दिया है ना, नहीं रहेंगे, वचन दे दिया है तुम्हारी सभी आवश्यकताएं पूरी होती रहेंगी, परंतु क्या पूरी नहीं होंगी, इच्छाएं नहीं। तो क्या हमें बाबा के वचनों पर विश्वास है? सभी इस विश्वास को बढ़ा के स्वयं को बेफिक्र बादशाह बनाएंगे। अब समय सा आ रहा है, हमें वो सब कुछ देखना पड़ेगा जिसे हम देखना नहीं चाहते। सब सोच लें, हम वो सब कुछ देखेंगे जिसकी हमने आज तक कल्पना नहीं की थी, जो हमारी कामनाओं के इच्छाओं के बिल्कुल प्रतिकूल होगा, वो हमें देखना होगा और देखना ही होगा। रोते हुए देखो या डांस करते हुए देखो, परेशान होते हुए देखो या सबको सकास देते हुए देखो, देखना होगा ही, क्योंकि जो खेल इस धरा पर चलने वाला है वो पहले से ही निश्चित है, उसको कोई नहीं बदल सकता। कोई भगवान को कहता रहे तुमने ये क्या कर दिया, तुम ऐसा क्यों कर रहे हो, सुनवाई नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? ये धरती देवताओं के लिए खाली होनी है। किसके लिए? किसके लिए? हमारे लिए। तो हमारे लिए खाली कराया जा रहा है ना। कोई मकान तोड़ा जा रहा हो कि तुम्हारे लिए सुंदर महल बनाएंगे, तो हम परेशान होंगे? भले ही हमें बिस्तर बोरी वहां से हटा के थोड़ा बाहर रखना पड़े, खुले में सोना पड़े, लेकिन खुश रहेंगे ना, महल हमारे लिए बन रहा है। तो बेफिक्र बादशाह, फिर से चेक करें कौन सा मैंपन, मेरापन हमें चिंताओं की चिता पर बैठाता है। सूक्ष्म बातें हैं, कुछ अपने ही अंदर विचार उठते हैं मनुष्य के मन में जो उसे चिंतित करते रहते हैं। कुछ सूक्ष्म इच्छाएं और कामनाएं उसे चिंतित करती रहती हैं। स्पिरिचुअलिज्म के मार्ग पर, इस रूहानियत मार्ग पर सबसे सूक्ष्म माया कौन सी है? मान की इच्छा, जो अनेकों को शांत नहीं रहने देती, जो अनेकों को संतुष्ट नहीं रहने देती, वो सूक्ष्म है। वो कभी कभी उनको भी पता नहीं होता जिनको वो इच्छा हो रही है, वो सोचते हम तो ठीक हैं। और ये स्पिरिचुअलिटी के मार्ग पर सबसे बड़ी बाधा है। गीता में भी है ये बात, योग भी जो योगी निष्काम भाव से करते हैं, विश्व कल्याण के लिए करते हैं, वही सर्वश्रेष्ठ योगी हैं। हमारा योग, हमारी योग की लाइट वाइब्रेशंस विश्व का कल्याण करें। देखिए, अपना भी कल्याण कर रहे हैं, पर इसको हम कंप्लीटली टर्न कर दें विश्व कल्याण के लिए, आत्मा को भी प्योरीफाई कर रहे हैं, परंतु ये विश्व कल्याण में हम लगा दें तो हमारा कल्याण उसमें स्वतः ही समाता रहेगा। तो चेक करें सभी, आपको बच्चों की चिंता है, बीमारियों की चिंता है, भविष्य में होने वाली किसी घटना की चिंता है, अपने प्रमोशन की चिंता है, नौकरी न मिलने की चिंता है, या बच्चों के इतने नंबर आने चाहिए वो चिंता है, या समाज में हमारा नाम न खराब हो जाए वो चिंता है, समाज हमें क्या कहेगा, हमारे फ्रेंड्स और रिलेटिव क्या कमेंट्स करेंगे उसकी चिंता है। ये सब बहुत प्रैक्टिकल चीजें भी हैं, लेकिन इन सभी चिंताओं को क्या कर दें? तेरा। ये बात भी कईयों को बहुत चिंतित करती है, समाज। अपने पे ध्यान कम, समाज पे ध्यान ज्यादा। मैं कुमार कुमारियों को कहता हूं, जो बाबा के हैं, समर्पित वालों की बात नहीं है, कि आजकल के कुमार कुमारियां बाहर पाप करने के समय चिंता नहीं कर रहे हैं कि समाज क्या कहेगा, कर रहे हैं। माताएं जानती है ना, एक जगह हम प्रोग्राम में थे अभी अभी, तो एक बहन ने भाषण में गिनाया कि कलयुग के अंत के ये लक्षण होंगे, शास्त्रों में लिखा है। तो उसने गिनाया कि कन्या अपने मुंह वर मांगेगी। प्रोग्राम पूरा हुआ, एक बहुत अच्छा व्यक्ति आया, कहा बहन जी आपने ठीक कहा, कन्या अपने मुंह वर मांगेगी। लेकिन ये तो लगता है कलयुग के अंत से भी बात आगे बढ़ गई है। कि क्या? कि कन्याएं मुंह वर मांगना तो छोड़ो, वर को लेके भाग रही हैं। अब वो समाज की ग्लानी की चिंता नहीं करती, माँ बाप को रोता हुआ छोड़ के भाग जाती हैं, और फिर एक दो साल में परेशान होकर रोती हुई वापिस आ जाती हैं, क्योंकि लव मैरिज सफल नहीं होती। बहुत कन्याओं ने किया, किसे प्यार किया उसके साथ भाग गई, जब गई तो देखा इसको तो एक छोटी सी झोंपड़ी है जंगल में। जाते ही दिमाग ठिकाने आ गया, माँ बाप ने कह दिया था वापिस नहीं आना हमारे घर में जा रही हो तो। पता चल गया प्यार क्या होता है। ये प्यार अंधा, जब उस अंधे प्यार में लोग समाज की चिंता नहीं कर रहे, सोचो कुमार कुमारियां, पवित्र बनने के लिए, भगवान की आज्ञा पालन करने के लिए, संसार का कल्याण करने के लिए, अपने जन्म जन्म का भाग्य बनाने के लिए, क्या समाज की चिंता करनी चाहिए? क्या समाज कभी खुश होता है? क्या समाज ने सत्य के मार्ग पर चलने वालों को साथ दिया है? दिया है आज तक? विरोध किया है। इसलिए जब असत्य झूठे गंदगी के मार्ग पे चलने वाले किसी की चिंता नहीं कर रहे हैं, तो ईश्वरीय मार्ग पे चलने वाले बेफिक्र बादशाह क्यों नहीं? और किसने कहा हमें तुम बेफिक्र बादशाह बन जाओ? किसने कहा? तो बहुत रहस्यों को समाते हुए ये बात कही गई है ना। बहुत अच्छी बात पे ध्यान देंगे। समस्याएं हमारे सामने हैं, निश्चित रूप से व्यक्ति को उनकी चिंता होती है, क्या होगा, कहीं ऐसा ना हो जाए, अपना एक कामना होती है, अपना एक टारगेट होता है, उसको लेकर मनुष्य चिंतित अवश्य रहता है। परंतु सूक्ष्म रूप से इसके एक्सपेरिमेंट करेंगे आप कि बातें जब हमारे सामने हैं तो हम जरा निश्चिंत रहकर देखें कुछ समय, थोड़ा डिटेच हो जाएं उन समस्याओं से और बेफिक्र बादशाह बन जाएं और बाबा को दे दें तेरा तेरा माना अर्पित कर दें, तुम संभालो, और उसमें विश्वास रखते हुए निश्चिंत होके देखें समस्याएं कितनी जल्दी समाप्त होती हैं। सब इसका अनुभव करेंगे। तो समस्याओं के बारे में चिंतित रहने से समस्याओं में वृद्धि होती है और समस्याओं के सामने निश्चिंत बेफिक्र नशे में परमात्म साथ की स्मृति में रहने से समस्याएं खत्म होंगी। ये सभी अनुभव बढ़ाएं, ये अनुभव बहुत सुंदर चीज होंगी और ये होगा हमारी संकल्प शक्ति के द्वारा, क्योंकि चिंताओं में मनुष्य के बहुत सारे संकल्प चले जाते हैं। बाबा ने हम सबको बहुत अच्छी बात दे दी, फॉलो फादर, बेफिक्र बादशाह रहने में फॉलो फादर। बाबा की 8 पॉइंट निकाल सकते हैं जहां बाबा बेफिक्र बादशाह रहे, मस्त रहे, कोई चिंता नहीं, खाने को अन्न नहीं है, लेकिन बाबा एक बल एक भरोसे है, जिसके बच्चे हैं वो खिलाएगा, उसके अपने प्रिय बच्चे उसे छोड़ के जा रहे हैं और बाबा निश्चिंत है। किसी के चार बच्चे और दो छोड़ के जाने लगे, माताओं का हाल बुरा हो जाता है, आधी मर जाती है माताएं। और बाबा के वो बच्चे, आप सोचो, जिनको 14 साल उसने बहुत प्यार किया, जिनको बड़े से पाल, छोटे से पालकर बड़ा किया, जिनको अपने हाथ से भोजन खिलाया, जिनकी हर तरह से केयर की, जिनके सुंदर भविष्य के सपने देखे थे, वो उसको छोड़ के गाली देते हुए, फूल चढ़ाते हुए नहीं, गाली देते हुए, बदनामी करते हुए चले गए। ऐसे में भी बाबा अचल अडोल, ये था ज्ञान का प्रकाश और माइट का प्रकाश और शिव बाबा पर संपूर्ण विश्वास। शुरू की बात देखो, तब बाबा अकेला था, यज्ञ स्थापित हुआ, प्योरिटी को लेकर, ज्ञान भी कुछ अलग है अपना, उसको लेकर समाज ने संपूर्ण रूप से विरोध किया, बाबा को मारने के भी प्रयास किए गए, हर तरह से उनको वो शब्द भी बोले गए जो एक मनुष्य को बोलने नहीं चाहिए, जो एक रॉयल व्यक्ति के लिए सबसे बड़ी अपमान की बात होती है, लेकिन बाबा जैसे वो चीज उसको आ ही नहीं रही थी, पाना था सो पा लिया, अब ये मान श्यान, ये लोगों की अप्रिसिएशन, इसकी कोई कामना नहीं। सुनी है ना कहानियां, बाबा कैसे अकेला चल डोल होकर चला, बाकी मामा साथ थी, छोटे थे, ये सब छोटे थे ना, छोटों को क्या पता होता है, 15 साल 16 साल, दो चार माताएं 20 22 25 साल की, बाकी भाई जो आए थे अब उनमें तो इतना बल नहीं था ना, तो अकेला और अकेले के साथ सर्वशक्तिवान और बेफिक्र बादशाह। तो देखो, सारे समाज को, ऐसा भी कह सकते हैं, सारे संसार को झुकना पड़ा। बाबा ने अपने सिद्धांतों को नहीं छोड़ा, छोड़ा समझौता नहीं किया। जाने वाले जिसको जाना है चले जाओ, शक्तिशाली आत्माएं मुझे चाहिए। सोचो आप सेवाएं प्रारंभ की, सेवाओं में जहां तहां विरोध, कुछ ऐसे समाज, कुछ ऐसे आए जिन्होंने विरोध किया बहुत सारा, ये कन्या है ये लड़कियां हमें क्या ज्ञान देंगी। सन्यासी तो एकदम विरोधी हो गए, और भी कई मठ पंथ वाले विरोधी हो गए। बाबा के पास पत्र लिखती थी बहने, तब ये साधन तो नहीं थे जो आज हैं, पत्र आएगा 15 दिन में। बाबा कभी समझौता नहीं करते थे। सुनिए कहानी, दिल्ली में गौरीशंकर मंदिर, बहनों को वहां ठहराया हुआ उसने, सेठ जी का मंदिर था। लोग आते थे, सत्संग चलता था छोटा सा, कल्प वृक्ष का चित्र लगा हुआ था। कल्प वृक्ष के चित्र पर एक पर्ची पर लिखा हुआ, वो चिपकी हुई थी, रामायण इज ए नॉवेल। अभी लोगों का ध्यान नहीं जा रहा था, भावना से लोग आ रहे थे क्योंकि बाबा साक्षात्कार कराते रहते थे। किसी ने देख लिया और मंदिर का जो मालिक था उसे कहा, ये क्या रामायण को नॉवेल लिखा इन्होंने, या तो ये पर्ची हटाओ या ब्रह्मा कुमारियों को हटाओ। बाबा के पास मैसेज आया, क्या कहा होगा बाबा ने, पर्ची नहीं हटेगी, तुम हट जाओ। वो समय जबकि बाबा को सेवा वृद्धि की बहुत आवश्यकता थी, जबकि छोटा छोटा सहयोग भी बड़ी कठिनाई से मिल रहा था, तो भी बाबा बेफिक्र बादशाह, जो सिद्धांत हैं वो सिद्धांत हैं। आज लोग हम में से क्या कर लेते हैं, गीता के भगवान को देख के लोग नाराज हो रहे, हटा दो चित्र, अरे ये लोग आएंगे लड़ाई कर देंगे, हटाओ फटाफट। ये अंतर है उस प्रथम पुरुष में और आज के लोगों में, जो सर्वश्रेष्ठ सबसे शक्तिशाली संसार की मोस्ट पावरफुल आत्मा ब्रह्मा, नाम ही जिसका सब प्रसिद्ध है ना, प्रजापिता ब्रह्मा, उसमें और आज के लोगों में ये अंतर है। तो हम सभी बाबा की बहुत चीजों को देखें, कैसे बाबा बेफिक्र बादशाह रहे, और इस चीज पर के कोई हमें सहयोग दे रहा है तो हम अपने सिद्धांतों को बदल दें, ये नहीं। यही एक सशक्त धर्म पिता की पहचान भी होती है। और भी बाबा ने बीमारियों को भी बहुत पास किया, ऐसा नहीं कि बाबा के तन में बीमारियां नहीं आई, ऑपरेशन भी हुए। हम तो सुनते थे सब, जब हम समर्पित हुए, जो बहने दादियां बाबा के साथ थी उसमें से एक भोली दादी हमारी इंचार्ज थी, वो हमें सुनाया करती थी। बाबा को भी कैसे कष्ट होते थे बीमारियों के, लेकिन बाबा की स्थिति कभी बिगड़ी हुई किसी ने नहीं देखी। तब तो देखो मेडिकल सुविधाएं यज्ञ में तो खैर थी नहीं, भारत में भी नहीं थी। किसी को यूरिन की तकलीफ हो जाए तो बहुत कष्ट उसको झेलने पड़ते थे, आजकल तो बड़े साधन है ऑपरेशन के। उन कष्टों में से गुजरते हुए भी बाबा ने अपनी स्थिति को आदर्श बनाए रखा सबके लिए, क्योंकि अगर बाबा की स्थिति हिलती है तो पूरा यज्ञ हिलता है, पूरा यज्ञ हिलता है तो पूरा कल्प वृक्ष हिलता है। तो ऐसे बाबा से हम बहुत चीजें सीखते हैं। साधनाओं के मार्ग पर बाबा रहे, आप सब अपने अपने अनुभवों से जानते हैं, साधना सभी से नहीं होती। योग तपस्या सिखाते हैं, मैं लोगों से पर्सनल कराता हूँ, एक हफ्ता करके सोच कहते हैं भाई मन नहीं लग रहा, अरे बोरियत हो रही इसमें, तो छोड़ दो फिर करेंगे थोड़ा। रोज सवेरे हमसे नहीं उठा जाता तो बड़ा मुश्किल हो गया, तभी तो नींद अच्छी आती है। किसी को मन की समस्याएं, किसी को संस्कारों की समस्याएं, किसी में त्याग का अभाव, किसी में वैराग्य के प्रति लगन की कमी, सभी को योगी नहीं बनने देती। और सर्वप्रथम श्रेष्ठ योगी बने मामा और बाबा। तो इसमें भी उन्होंने, हम समझ सकते हैं, बहुत सुंदर स्थिति, ज्ञान का बहुत बड़ा बल, बाबा का बहुत बड़ा नशा अपने पास रखा है। आप सब जानते हैं बाबा की एक बात कि बाबा को भविष्य का नशा बहुत ज्यादा था, जो हमें भी अपने जीवन में बढ़ाना है। तो हम सभी अपने अपने मैं और मेरे पर नजर डालेंगे, सब अपने को देखेंगे, केवल क्लास सुनने से काम नहीं हो जाएगा, सब अपने पे नजर डालें और उस चीज को बाबा को अर्पित करें तेरा। मुझे बहुत सारे भाई बहने अपना अनुभव सुनाते हैं, हमारा बच्चा ऐसे ऐसे कर रहा था, हम बहुत चिंतित थे, हमारी समझ में नहीं आता था इसको करें क्या आखिर, और जब बाबा को अर्पित कर दिया, अब तुम इसके बाप हो ना, मैं ही थोड़ा ही हूँ, तुम भी तो हो, तुम भी इसकी चिंता करोगे ना, बाबा को दिया, थोड़े दिन में बच्चा ठीक हो गया। एक सरदार जी ने सुनाया, उसका बच्चा पढ़े, कहा मैं तो अमेरिका जाऊंगा, भेज दिया पैसा खर्च करके अमेरिका, 6 मास के बाद कहता मेरा यहाँ मन नहीं लगता, मैं वापिस आ रहा हूँ, चलो भाई वापिस आ जाओ। फिर एक बैंक में नौकरी मिली, चलो बैंक में बहुत अच्छा मन लग गया, 3 मास के बाद कहता मैं इनके साथ काम नहीं करूंगा, छोड़ दो, छोड़ दिया। शादी के बारे में भी ऐसे ही झंझट डालता रहा, तो बेचारा परेशान हो गया सरदार जी, कहा बाबा अब ये तुम्हारा बच्चा है मेरा नहीं, संभालो। 2-3 मास में ऐसा अच्छा सेट हुआ, संतुष्ट हुआ, परिवार भी खुश, बच्चा भी खुश। तो देखिए दिखाई देता है हम चिंतित होकर भी कुछ नहीं कर सकते, क्या कर सकती है माताएं, और बाबा के हाथ में सौंपने से वो सब कुछ कर देता है। तो बाबा को पहचान लें, अपनी शक्तियों को भी पहचान लें, फॉलो फादर भी करेंगे और बेफिक्र बादशाह हम सबको होना है, तब हम क्या कर पाएंगे, तब क्या कर पाएंगे हम भविष्य में, विश्व की चिंताओं को हरने वाले बन जाएंगे। ये बड़ा काम करना है। मेरे पास डॉक्टर्स आते रहते हैं आजकल, आज भी एक डॉक्टर बहन आई थी, मैंने उसे पूछा, साइकेट्रिक है वो, बच्चों की और बड़ों की भी, मैंने उनसे पूछा दवाइयां काम करती हैं, तो आजकल सभी डॉक्टर कहते हैं कि दवाइयों का इफेक्ट कम होता जा रहा है, और मुझे ऐसा लग रहा है थोड़े समय में दवाइयां काम नहीं करेंगी, क्योंकि मनुष्य के अंदर की जो वाइटल फोर्स है ना, जो ग्रहण शक्ति है, वो नष्ट होती जा रही है विकारों के कारण, कमजोर संकल्पों के कारण। इसलिए बाबा ने कह दिया दवाई निकालो मेरा बाबा, कितनी सुंदर दवाई है, हम सबके पास ये दवाई है, लेकिन इसको अपने नशे में और गुड फीलिंग में ले आए, केवल कहने की बात नहीं है मेरा बाबा, फील हो जाए जो भगवान है वो मेरा है और मेरे साथ है, मेरी जीवन की हर जिम्मेदारी उसके ऊपर है। किसी के जीवन को राजा संभाल रहा हो तो वो चिंतित क्यों होगा कि कहाँ से बच्चों को पढ़ाऊंगा, कहाँ से भोजन खिलाऊंगी, कैसे इनकी शादी होगी, चिंता होगी, राजा जो संभाल रहा है। और जिनको भगवान संभाल रहा हो, सभी सोच ले, जिनकी पालना की जिम्मेदारी स्वयं विश्व की जिम्मेदारी उठाने वाले ने ले ली हो, वो चिंतित क्यों। तो सभी बेफिक्र बादशाह बन जाएं, तो सबके फिक्रों को हरने वाले बन जाएंगे। एक लक्ष्य और बना लें सभी, हमें सबकी बिगड़ी को बनाना है, किसी की बनी हुई को बिगाड़ना नहीं है। गहन टॉपिक है बहुत, दूसरे की खुशी को डिस्टर्ब कर देना माना हमने उसकी बनी हुई बिगाड़ दी, किसी की स्थिति में डिस्टर्बेंस पैदा कर देना हमने बिगाड़ दिया, तो क्या होगा, क्या होगा, बिल्कुल एक ही सृष्टि का अटल नियम याद रख लें, जो काम दूसरों के लिए हम करते हैं वही काम हमारे लिए भी कोई करेगा। हम किसी का द्वार बंद करते हैं, हमारे द्वार बंद करने वाले भी मिलेंगे, ये अटल नियम है इस सृष्टि रचना का। हम किसी की ग्लानी कर रहे हैं, हमें भी ग्लानी सुननी पड़ेगी। रोज हम देखते हैं, हम मीठे वचन बोलें तो कैसे सुनेंगे, कड़वे बोलें तो दो की बजाय चार सुनेंगे ना। ये तो नहीं ना, कड़वे हम बोलते रहे और दूसरा सुनता ही रहेगा, ये तो सदा नहीं होगा, दस सुनाएगा ना इकट्ठा ही। इसलिए हम अपने को ऐसा बनाएं कि जैसा हम अपने से व्यवहार की कामना करते हैं वैसा ही व्यवहार करने भी लगें। तो सभी बेफिकर बादशाह जब तक बाबा आए हम दिखाएंगे, हमें कोई चिंता नहीं। एक भाई ने बहुत अच्छा अनुभव सुनाया कल मुझे मधुबन में क्लास से पहले, उसी की अनुभव से मैंने कल क्लास शुरू की। कहा आज मैंने सारा दिन बार बार याद किया, ये भी तेरा। बात आई ये भी तेरी, तीसरी बात आई तेरी, ये हुआ तुझको अर्पण। कहा मैं सारा दिन मगन रहा हूँ आज। तो 2013 में सब कुछ तेरा, उसमें अपनी मन की चिंताएं, जीवन की समस्याएं, बच्चों की परेशानियां, देह की बीमारियां, संस्कारों की कठिनाइयां, सब तेरा। गुंजा दे अपने मन में, सब तेरा और तू मेरा, बस मस्त फकीर, कोई चिंता नहीं। संसार में ऐसे जिए जैसे बादशाह हैं हम। स्वामी राम तीर्थ कहते थे ना, उसने अपना नाम ही रख लिया था, राम तो बादशाह है। जंगल में जा रहा था, शेर आ गया था, शेर को देखकर वो रुका ही नहीं, चलता रहा, तू जंगल का राजा और मैं भी बादशाह, राम भी बादशाह, आओ दोनों गले मिलेंगे, देख लो बहादुरी। और शेर बेचारा पीछे मुड़ा और चला गया, ये उसकी सत्य घटना है। इतना मस्त रहता था, राम तो बादशाह है। तो राम अगर बादशाह है तो सूर्यवंशी क्या है, क्या है? तो जब एक अच्छा सन्यासी, रामतीर्थ भी विवेकानंद के आसपास के बहुत अच्छे ये सन्यासी हुए हैं, तो जब एक सन्यासी मस्त रह सकता है शेर को देखकर भी जो चिंतित नहीं हुआ मृत्यु से, तो जिनके ऊपर भगवान की छत्र छाया है न उन्हें भय न चिंता। कल की मुरली में ये भी था, भय बहुत बढ़ने वाला है, हम स्वयं भी निर्भय बन जाएं, मास्टर महाकाल, मास्टर सर्वशक्तिवान, सिर पर छत्र छाया, मृत्यु का कोई भय नहीं, हम तो मरते ही नहीं। तो सभी बहुत आनंदों में रहेंगे बाबा के आने तक, और प्रैक्टिकल अपना स्वरूप दिखाएंगे। ओम शांति। I'm not afraid.